दिन भर 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। परमाणु हथियारों की समाप्ति के लिए काम करने वाले समूह आईकैन को नोबेल शांति पुरस्कार।
Decided to award the Nobel Peace Prize for 2017 to the international campaign to abolish nuclear weapons, ICAN.
GSC Council की दिल्ली में अहम बैठक और विवेचना में बाद भारतीय फुटबॉल इतिहास के 3 सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ मुकाबलों की।
जब टीम बस गेम्स विलेज से ग्राउंड जा रही थी तो जर्नैल सिंह को बस के जमीन पर रहना पड़ा, क्योंकि वो सरदार थे तो पगड़ी पहनते थे हमेशा, तो वो दिख जाती कि इंडियन टीम है, तो वो लोग पत्थर फेंकते थे बस पे।
लेकिन पहले विश्व समाचार।
BBC समाचार, कुलदीप मिश्र से। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार परमाणु हथियारों को खत्म करने के अंतर्राष्ट्रीय अभियान आईकैन को उसके प्रयासों के लिए दिया जाएगा। नोबेल समिति ने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध के मकसद से संधियों के प्रयासों के लिए संस्था की प्रशंसा की है और भविष्य में इस पर पूरी तरह प्रतिबंध के लिए बातचीत की अपील की है। आईकैन ने कहा है कि उन्हें पुरस्कार मिलने से अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया तक संदेश गया है कि परमाणु हथियार रखना और उन्हें इस्तेमाल करने की धमकी देना गैर कानूनी है। जर्मनी ने भी नोबेल समिति को उसके चयन के लिए बधाई दी है। यूरोपीय आयोग ने कहा है कि ईरान से परमाणु समझौता लागू है और सभी पक्षों को अपनी प्रतिबद्धता पर डटे रहना चाहिए। रूस ने भी समझौते को उसके मौजूदा स्वरूप में बनाए रखने की वकालत की है। हालांकि इससे पहले अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि ईरान ने समझौते की आत्मा का पालन नहीं किया है और वही समझौते को खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं। कहा जा रहा है कि समझौता खत्म किए जाने की सूरत में ईरान पर दोबारा प्रतिबंध लगाए जाने का रास्ता खुल जाएगा। रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि अमरीका एक संतुलित फैसला लेगा। उन्होंने कहा, हम उम्मीद करते हैं कि यूरोपीय देशों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के दूसरे सदस्यों और अमेरिका के बीच जारी संपर्क, जो ईरान के समझौते के बारे में भी है, व्यर्थ नहीं जाएगा और अमेरिकी राष्ट्रपति का आखिरी फैसला संतुलित होगा और मौजूदा हालात की असलियत पर आधारित होगा। इस कार्यक्रम की बहुत ज़रूरत है। ये थे रूसी विदेश मंत्री सर्जेई लावरोव के शब्द। स्पेन की संवैधानिक अदालत ने कैटलोनिया की स्थानीय सरकार के संसद सत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन वहां की स्थानीय सरकार के विदेशी संबंधों के मंत्री रॉल रोमेवा ने कहा है कि संसद का यह सत्र सोमवार को जरूर होगा। कहा जा रहा है कि विवादित जनमत संग्रह के बाद इस संसद सत्र में स्पेन से आज़ादी का एक तरफा ऐलान भी किया जा सकता है। स्पेन की सरकार ने कंपनियों के कैटलोनिया से अपना काम समेटकर स्पेन जाने की कानूनी प्रक्रिया भी आसान कर दी है। वहीं कैटलोनिया के पुलिस प्रमुख और जिन 2 प्रमुख अलगाववादी नेताओं को देशद्रोह से जुड़े मामलों में हिरासत में लिया गया था, उन्हें पूछताछ के बाद बिना शर्त छोड़ दिया गया। उनके अदालत से बाहर निकलने पर लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। स्पेन के यूरोपीय मामलों के मंत्री जॉर्ज टोलेडो ने आरोप लगाया है कि कानून के बाहर जाकर कैटलन सरकार ने अपनी वैधता खो दी है। संयुक्त राष्ट्र ने म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों तक संस्था को पहुंच न मिलने को अस्वीकार्य बताया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवतावादी कार्यालय के प्रमुख मार्क लोकॉक ने कहा कि हिंसा के बावजूद लाखों रोहिंग्या अब भी रखाइन प्रांत में हैं। जिनेवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र म्यांमार से और पलायन के लिए खुद को तैयार कर रहा है। अगस्त में शुरू हुए संकट के बाद से अब तक 5 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थी बांग्लादेश आ चुके हैं। मार्क लोकॉक ने कहा,
We have small numbers of international staff there, but they're not able to go about their job in the...
हमारे अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी वहाँ बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन वे अपना काम वैसे नहीं कर पा रहे हैं जैसे उन्हें करना चाहिए, और हम म्यांमार प्रशासन से अपनी अपील दोहराते हैं कि वे इंतजाम ठीक कर लें ताकि सिर्फ संयुक्त राष्ट्र नहीं सभी मानवतावादियों के लिए यह संभव हो सके। ये थे मार्क लोकॉक के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। कंबोडिया में आम चुनावों से 9 महीने पहले वहां के सरकारी वकीलों ने मुख्य विपक्षी पार्टी को भंग करने की मांग करते हुए एक मुकदमा दाखिल किया है। कंबोडिया नेशनल रेस्क्यू पार्टी के खिलाफ यह ताज़ा कदम है। इससे पहले पार्टी के नेता किम सोखा के खिलाफ पिछले महीने देशद्रोह का आरोप लगाया गया था। BBC समाचार।
BBC हिंदी से दिन की दूसरी सभा। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। भारत में आज से अंडर 17 फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। हम आज दिन भर में फुटबॉल वर्ल्ड कप और भारत के अब तक के तीन सबसे उम्दा फुटबॉल मुकाबलों की बात करेंगे। बात गुड्स एवं सर्विस टैक्स यानी जीएसटी काउंसिल मीटिंग की भी होगी, लेकिन शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। इस साल के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। शांति के नोबेल के लिए इंटरनेशनल कैंपेन टू एबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स यानी ICAN को चुना गया है। नोबेल कमेटी ने परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए हुई संधि में ICAN के प्रयासों की सराहना की है। वहीं संस्था ने नोबेल पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए कहा है कि अभी इस दिशा में और काम किए जाने की जरूरत है। एक रिपोर्ट के साथ BBC संवाददाता हरिता कांडपाल।
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize.
नोबेल कमेटी ने 2017 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार द इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन्स ICAN को देने का फैसला किया है। इस संगठन को ये पुरस्कार इस तरफ ध्यान दिलाने के लिए दिया जा रहा है कि अगर किसी परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया गया तो नतीजे विनाशकारी होंगे। साथ ही ऐसे हथियारों पर रोक के लिए संधि कराने में अभूतपूर्व प्रयासों के लिए भी दिया जा रहा है। ये थी नोबेल कमेटी की चेयरपर्सन बेरित राइस एंडरसन, जिन्होंने आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में ICAN को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुने जाने का ऐलान किया। ICAN की ओर से बनाए गए दबाव के बाद इस साल जुलाई में 122 देशों ने संयुक्त राष्ट्र की संधि का अनुमोदन किया, जिसमें परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें खत्म करने की बात की गई है। लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 9 घोषित परमाणु हथियार संपन्न देशों ने इस संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। ICAN 100 से ज्यादा संगठनों का समूह है, जिसकी स्थापना 10 साल पहले की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है। नोबेल कमेटी की चेयरपर्सन एंडरसन ने परमाणु हथियार संपन्न देशों से हथियार खत्म करने के लिए बातचीत शुरू करने को कहा है। उन्होंने उत्तर कोरिया के मुद्दे का भी जिक्र किया और कहा कि ICAN को पुरस्कार दिए जाने का वक्त अहम है। वजह यह है कि दुनिया पर अब परमाणु हथियारों का खतरा ज्यादा है।
Disarmament of nuclear weapons never go out of date. I have drawn a line back to the first UN.
परमाणु हथियारों के अप्रसार की बात कभी भी चलन से बाहर नहीं होती। संयुक्त राष्ट्र में इस बारे में पहला प्रस्ताव 1946 में आया था, लेकिन मुझे लगता है कि पूरी दुनिया के लोग मानते हैं कि अब दुनिया ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। ऐसा लगता है परमाणु संघर्ष का खतरा करीब आ गया है। ये थे नोबेल कमेटी के चेयरपर्सन के शब्द। वहीं ICAN की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बियट्रिस फिन ने कहा है कि संस्थान को नोबेल पुरस्कार मिलना एक अहम प्रोत्साहन है, लेकिन अभी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है।
Getting rid of nuclear weapons isn't going to happen overnight. The treaty is meant to make it harder to justify nuclear.
परमाणु हथियारों से मुक्ति रातों रात नहीं मिल सकती। संधि के जरिए परमाणु हथियार रखने को न्याय संगत बताना कठिन होगा। देशों के लिए यथास्थिति रखना मुश्किल होगा। लंबे वक्त से जिन लोगों ने इस पर काम किया है, उनके लिए ये एक अहम प्रोत्साहन है। ये संकेत है कि ये एक ऐसा उपयुक्त काम है जिसकी जरूरत है और इसकी सराहना की जाती है। ये थे ICAN के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बियट्रिस फिन के शब्द। ICAN को नोबेल पुरस्कार दिसंबर में दिया जाएगा। इसके पहले साल 1995 में परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान चलाने वाले एक अन्य संगठन पगवॉश कॉन्फ्रेंस को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था।
रिपोर्ट सुना रही थी हरिता कांडपाल। 10 साल से परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान चला रहे ICAN को नोबेल पुरस्कार दिया जाना कितना अहम है, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से रिटायर्ड प्रोफेसर अचिन विनायक से यही सवाल किया।
एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये जो ट्रीटी जो है, ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, बैन जो करता है परमाणु शस्त्र को, ये एक बिल्कुल न्यू ट्रीटी है और जो पहली बार आउटलॉ कर रहा है न्यूक्लियर वेपन्स का पोजेशन, उसका बनाना, उसका डिप्लॉयमेंट, उसका स्टॉक पाइलिंग, उसका ट्रांसफर वगैरह, इसको बिल्कुल बैन किया। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा ट्रीटी नहीं था जिसने कहा कि ये बिल्कुल बैन होना चाहिए और ये है इमोरल। अभी तक ऐसा नहीं था। जो एग्जिस्टिंग ट्रीटीज थे वो कहते थे कि जिनके पास परमाणु शस्त्र है उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो इनको हटा दे। अब पहली बारी आया है ऐसे एक ट्रीटी जो कहता है कि जो तुम कर रहे हो वो इलीगल है और देयरफॉर क्रिमिनल है। मेरे कहने का मतलब है अगर इसका आपको एक तुलना चाहिए तो पिछली शताब्दियों में जो प्रगतिशील लोग थे वो कहते थे कि हमको स्लेवरी को हटाना चाहिए, बहुत सारे देश के पास स्लेवरी था। तो क्या हुआ, हटाने से पहले उन्होंने एक नियम किया, कई देशों ने वगैरह किया कि स्लेवरी इमोरल है, बिल्कुल खराब है। और ये कहने से एक वातावरण पैदा हुआ जहां पर लोग कह सकते थे कि हाँ देखो उस देश के पास स्लेवरी है, ये बिल्कुल गलत है। अब इंडिया के लोग जो समर्थन करते हैं परमाणु शस्त्र को या हमारे सरकार को है वो सब है, अब वो इस बात से नहीं कह सकते। अब ये क्या हुआ कि इंटरनेशनल लॉ के अंदर दे आर क्रिमिनल, चाहे वो बड़े शक्तिशाली हैं, कम से कम अब ये एक नियम आया है कि तुम क्रिमिनल हो, और ये एक कदम है आगे जाने के लिए।
122 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं इस संधि पर, लेकिन 9 परमाणु संपन्न देश जो हैं घोषित तौर पर उन्होंने इस संधि से खुद को दूर रखा है, तो ऐसे में क्या जो आईकैन को सम्मान दिया गया है ये इसके क्या सांकेतिक मतलब है?
दो बातें, एक तो उन्होंने कहा कि ये ट्रीटी महत्वपूर्ण है, जैसे कि मैं आपको एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, लैंड माइंस का ट्रीटी है ना, कुछ देश अभी भी लैंड माइंस उपयोग करता है, मगर जब बहुत सारे देशों ने एक साइन किया ट्रीटी की लैंड माइंस नहीं होनी चाहिए तो इसका अच्छा असर होगा या बुरा असर? साथ साथ में हम ये नहीं कह सकते कि ये जो 9 देश कल या परसों या तरसों वो अपने परमाणु शस्त्र हटाएंगे या निरस्त्रीकरण करेंगे, ये तो नहीं करने वाले हैं, और ये तो बोलेंगे कि हमारी जरूरी है, हम इस बात को नहीं मानते, ये वो वगैरह तो सब बोलते रहेंगे, मगर दुनिया के बहुत सारे देशों ने कहा कि जो तुम कर रहे हो गलत हो, इसका कुछ असर होता है पॉलिटिकल की नहीं। दूसरी मैं और बताऊंगा दो और बातें कि ये जब इस समय आया है जो ट्रंप का जो सरकार है, एक तो बड़ा दम की थ्रेट कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया को कि हम वॉर करेंगे, ये करेंगे वो करा, दूसरी बात जो ट्रंप कह रहे हैं कि हम वो जो ईरान न्यूक्लियर डील जो हुआ 2015 में ईयू प्लस वो जो 5 देश के और ईरान के बीच में एक न्यूक्लियर डील हुआ, ट्रंप अब कह रहे हैं कि हम इसको उठाएंगे, तो ये इस अवार्ड से उसके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल भी हो जाएगा ये असर करने का, इसका भी असर होगा आम जनता के ऊपर, अमरीका के अंदर, बाकी जगह के भी अंदर। और आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है और चीन और रूस और जो बाकी देश है जो इस ईरान डील में भी वो शामिल है, वो भी कह रहे हैं कि ट्रंप को ऐसा नहीं करना चाहिए, कि यहां से हटना चाहिए।
ये थे प्रोफेसर अचिन विनायक।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
और अब बात दिल्ली में चल रही जीएसटी काउंसिल की बैठक की। इस बैठक पर हमारे सहयोगी बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद साहब ने सुबह से नजर रखी हुई है। जुबैर साहब, क्या कुछ निकल के आया, सुबह से मीटिंग जारी है?
वात्सल्य, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मीटिंग 10:30 शुरू हुई और अब भी जारी है। पहले ये खबर आई कि 6 जो वित्त मंत्री अरुण जेटली साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि क्या बैठक में तय हुआ है, लेकिन फिर उस खबर आई कि 7 ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और अभी ये खबर आ रही है कि जब मीटिंग समाप्त होगी उसके बाद ही वो प्रेस के सामने आके बताएंगे कि मीटिंग में तय क्या हुआ। मुद्दा ये है और आम लोगों से जुड़ा है, इसलिए आम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जानना, हमारे श्रोताओं के लिए भी, कि ये जो GST लागू किया गया है उसमें बहुत सारे ऐसे जो छोटे व्यापारी हैं वो उससे प्रभावित हुए हैं। तो जैसे उनको हर महीने टैक्स रिटर्न भरना पड़ता है, तो अभी 3 ये सलाह दी जा रही है कि भाई हर 3 भरने के लिए उनको छूट दी जा सकती है। ये इस पर तय लगभग हो चुका है। फिर ये जो एक्सपोर्टर्स हैं हमारे, उनको रिफंड जो होता है पैसा सरकार वापस करती है, वो 65,000 जो है वो सिर्फ जुलाई के महीने में सरकार को वापस करना था, वो अभी तक नहीं हुआ, तो उसमें जो देरी हो रही है उसको कैसे टैकल किया जाए। इसके अलावा जो और एक दो मुद्दे हैं, जैसे कि अगर आप 60 ऐसे आइटम्स हैं जिसके जो GST दर हैं वो कम करने की बात चल रही है, तो वो 60 आइटम्स के GST के दर कम होंगे तो इन चीज़ों की कीमतें भी कम होंगी, तो आम लोगों को उससे फ़ायदा होगा, राहत मिलेगी। तो इन सब मुद्दों पे बात चल रही है, हो सकता है कि जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म होने को आए या उससे
तो शायद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए। मैं एक बहुत छोटा सा आपसे सवाल जानना चाहूँगा संक्षेप में जवाब, कि जो यशवंत सिन्हा ने और अरुण शौरी ने बिहार में जिस तरह से हमला किया है, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या उसका असर दिख रहा है जो इतनी लंबी मीटिंग खींच रही है?
ये मीटिंग तो पहले से तय थी, पहले 9 सितंबर को हैदराबाद में मीटिंग हुई थी जहां पे 40 ऐसे जो आइटम्स हैं उनके जो दर कम किए गए थे जीएसटी के, और ये मीटिंग होनी थी, लेकिन एक तरह से दबाव तो सरकार पे है क्योंकि उन्होंने जीएसटी पे भी हमला किया कि बहुत जल्दबाजी में किया गया और इट्स वेरी पुअरली इम्प्लीमेंटेड, कह रहे हैं कि आप जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया है वो सही नहीं है, तो उसका असर
दिख रहा है। बहुत शुक्रिया जुबैर साहब।
बीबीसी इंडिया बोल।
मूछें रखने के कारण गुजरात में दलित युवकों पर हमला, गरबा देखने पर हत्या। गुजरात जैसे प्रगतिशील राज्य में क्यों है निशाने पर दलित? दलितों के गुस्से का विधानसभा चुनावों पर कितना असर पड़ेगा? इस बार इंडिया बोल में चर्चा इसी विषय पर होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए शनिवार शाम 7:30 बजे मुफ्त फोन कीजिए 1800 11 7000 और 1800 102 7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
और अब वक्त विवेचना का। आज से भारत में अंडर 17 फीफा विश्व कप की शुरुआत हो रही है। विश्व फुटबॉल रैंकिंग की बात करें तो इस समय भारत का 107वां स्थान है। हाल में नोविक कपाड़िया की एक किताब प्रकाशित हुई है, बेयर फुट टू बूट्स द मैनी लाइव्स ऑफ इंडियन फुटबॉल, जिसमें 3 ऐसे फुटबॉल मैचों का जिक्र है जब भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों ने अपने कौशल का लोहा मनवाया। आज की विवेचना में रेहान फजल याद कर रहे हैं उन बड़े फुटबॉल मैचों को।
जुलाई 1911 को भारतीय फुटबॉल का सबसे बड़ा दिन माना जाता है। इस दिन कलकत्ता के क्लब मोहन बागान ने आईएफए शील्ड के फाइनल में अंग्रेजों की टीम ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को 2-1 से हराकर इतिहास रच दिया था। इस मैच का क्रेज इतना जबरदस्त था कि इसको देखने के लिए दर्शकों को लाने के लिए ईस्ट इंडियन रेलवे ने पास के राज्यों असम और बिहार से कलकत्ता के लिए खास ट्रेनें चलाई थी। बेयरफुट टू बूट्स द मैनी लाइव्स ऑफ इंडियन फुटबॉल के लेखक नोवी कपाड़िया बताते हैं,
केवल 10 लाख की आबादी में इतना रुचि हो गया था कि स्पेशल ट्रेन आए के लोगों को लाने के लिए। स्टेडियम तो थे नहीं, तो लोग जो खड़े हुए, जिन्होंने हमेशा वो होशियार लोग होते जो व्यापारी होते, उन्होंने लकड़ी के डब्बे ले आए वहाँ और चार आने लेते थे, ये डब्बा हम तुम्हें देंगे, तुम उस पर खड़े होके मैच देखना। इतनी कैपेसिटी तो थी नहीं, और जो कुर्सियाँ थी वो केवल अंग्रेज़ों के लिए थी। तो भारतीय जनता जो आई है वो शुरू में जो आ गए वो तो बैठ गए, लेकिन पीछे की जनता को तो कभी मैच दिख भी नहीं रहा था। लेकिन ये एक राजनीतिक मैच था कि एक भारतीय टीम अंग्रेज़ टीम के विरुद्ध फाइनल में खेल रहे, और लोग आए और उन्हें मैच पूरी तरह दिख भी नहीं रहा था, तो पतंग उड़ाई जाती थी, और पतंग मोहन बगान के रंग में थी, मरून और ग्रीन, जो हमेशा मोहन बगान ने ये जर्सी पहना हुआ है। तो उस पतंग पे स्कोर लिखा था 0-0, 0-1, 1-1, तो जो पीछे लोग थे वो बस उसी में खुश थे, तालियां बजाते थे।
पहला गोल अंग्रेजों की तरफ से सार्जेंट जैक्सन के पैर से आया था, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद मोहन बगान के शिवदास भादुड़ी ने गोल उतार दिया था। इसके बाद अभिलाष घोष ने विजयी गोल मारकर वो कर दिखाया था जिसकी कम से कम उस समय तक कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।
कभी भी कोई भारतीय टीम फाइनल नहीं पहुंचा था, तो एक वो ऐतिहासिक इंसिडेंट हो गया, तो सब कालीघाट के मंदिर पे गए थे, और उसमें रेवरेंड सुधीर चैटर्जी भी थे जो क्रिश्चियन थे, बाद में प्रीस्ट वगैरह भी बने, लेकिन वो भी साथ में टीम स्पिरिट था, तिलक लगाया। उस समय यह था कि हर कम्युनिटी के लोगों में उत्साह था, ये नहीं था कि केवल खैर ईस्ट बंगाल तो तब शुरू नहीं हुआ था, लेकिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग थे, लेकिन मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने भी मोहन बगान का स्वागत किया था जब मोहन बगान जीते।
मोहन बगान की पूरी टीम ये मैच नंगे पैर खेली थी, इसलिए नहीं कि बूट पहनकर खेलने में उन्हें कोई दिक्कत थी, बल्कि इसलिए कि उस समय हाथ से सिले हुए फुटबॉल बूट 7.04 रुपए में आते थे, जो कि उस जमाने में एक बड़ी रकम होती थी, और मोहन बागान के खिलाड़ियों के पास इतने पैसे नहीं होते थे। एक कहानी ये भी मशहूर है कि मोहन बागान की उस टीम के स्टार खिलाड़ी सुधीर चैटर्जी को मैदान में पहुंचने से रोकने के लिए अंग्रेजों ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था।
देख तो सुधीर चटर्जी थे वो टीचर थे कॉलेज में, तो शुरुआत में अंग्रेजों के हाथों में होता था कॉलेज सारे, तो शुरुआत में उनको कॉलेज में ज़्यादा देर रखते थे कि वह मैच के लिए ना पहुँचे। अंग्रेजी टीम को भी पता लगा कि मोहन बगान ये दफ़ा बहुत शक्तिशाली टीम है, बहुत कठिन होगी हराने, तो ब्रिटिश टीमों को इसका भी डर था, तो सुधीर चटर्जी को पहले लेट भेजते थे। फाइनल के दिन वो समझ गए तो वो छुपके से पीछे के गेट से निकल गए कि लेट ना पहुँचे मैच में। और वह ये लोग कहते हैं, वो जो फिल्म भी बनी है एगारो, उसमें भी ये सीन है कि जब सुधीर चटर्जी डिफेंडर थे तो क्लियरेंस करते थे, लंबे अच्छे कद के आदमी थे, तो चीयरिंग जो मोहन बगान के लिए तो सारे भारतीय लोग करते थे, अंग्रेज तो उस समय चुप रहते थे। एक लड़की उठ जाती थी, यंग ब्लॉन्ड, जैसे वो लगान वाली फिल्म का सीन था, तो वो सुधीर चटर्जी के लिए हर दफ़ा वो बॉल टच करते थे, तो वो कुछ लोगों का कहना है एलिमेंट ऑफ रोमांस था।
भारतीय फुटबॉल का एक और ऐतिहासिक मैच था जब भारतीय टीम ने 1956 के मेलबर्न ओलंपिक खेलों के क्वार्टर फाइनल में मेजबान ऑस्ट्रेलिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। ये मैच भारत 4-2 से जीता था और सेंटर फॉरवर्ड नेविल डिसूजा ने हैट्रिक की थी। उस टीम के सदस्य और बाद में भारत के कोच बने पीके बैनर्जी को वो मैच अभी भी याद है।
वो मैच में नेविल जो फुटबॉल खेला वो तो देखने का लायक था। खाली वो हैट्रिक नहीं, हैट्रिक तो कभी आज तक हिंदुस्तान का कोई खिलाड़ी फुटबॉल में कभी ओलंपिक में हैट्रिक किया ही नहीं। नेविल ने क्या गोल किया, इतना नाजुक उसका पैर का टच था, देखने का लायक। लास्ट गोल जो किया था, गोलकीपर को काट के गोल किया, हमारा बैक पास उसको मिला ओपन, वो शूट करके गोल कर सकता था, मगर उसका इतना आत्मविश्वास कि वो उसको लेके गोलकीपर को काटा, इत्मीनान से काट कर डाल दिया जाल में।
नेविल डिसूजा को इस मैच में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए उनके साथ हुई मेलबर्न में घटना ने प्रेरित किया था।
तो ये जब मेलबर्न गए तो नेविल डिसूजा साहब निकले कि थोड़ा मेलबर्न घूम लेते, तो डबल डेकर बस में बैठे, तो वो ओलंपिक का उनका वो कार्ड था, तो जो बस में लोग थे वो सब आए, वेर यू फ्रॉम, कहाँ से हो, तो इंडिया, तो इज इट हॉकी, नो 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 फुटबॉल, तो लोग हंसने लगे, अरे फुटबॉल तो इंडिया का कभी नाम भी नहीं सुना, तो किससे पहला मैच है, दे सेड ऑस्ट्रेलिया, दे सेड ओ चलो यू नो हैव अ चॉकलेट बिकॉज यू आर गोइंग बैक, तुम तो हार के चले जाओगे वापस। तो डिसूजा को बहुत उस समय वो गुस्सा लगा था कि सब हमारा मजाक उड़ा रहे, कि इंडियन फुटबॉल खेलने नहीं जानते, तो बहुत जोश में थे।
सेमीफाइनल में भारत योगोस्लाविया से 1-4 से हार गया, लेकिन वहां भी पहला गोल भारत ने ही किया। भारत के खेल की हर जगह तारीफ हुई।
1956 में जब ऑस्ट्रेलिया से जीते तो सर स्टैनली राउस जो फीफा के अध्यक्ष थे तो इंडिया के ड्रेसिंग रूम में आए और शाबाशी दी। उस समय यह था कि फुटबॉल केवल यूरोप और दक्षिण अमेरिका में होता था, एशिया अफ्रीका बहुत पीछे थे, तो इसे हमें ऐसा कोच चाहिए कि एशिया और अफ्रीका में जाके सिखाए। कि इंडिया हैरानी हो गई कि 4 साल पहले हमने देखा इंडिया 10-10 गोल से हारी थी, अब तुम मेज़बान देश को इतनी आसानी से हरा रहे और इतना स्किलफुल फुटबॉल खेल रहे। देखो हम यूगोस्लाविया से भी सेमीफाइनल में नेविल डिसूजा ने गोल किया, वो हमारी वो थी फुटबॉल फेडरेशन की गलती कि उस समय हम केवल 70 मिनट के मैच खेलते थे, कलकत्ता लीग तो 50 मिनट का होता था, तो हमारे आखिरी 20 मिनट में सांस निकलने आते थे। रहीम ट्रेनिंग तो कराता था लेकिन जो सालों का जो आदत है, तो हमने आखिरी 15 मिनट में गोल खाए, और वो भी जब पीके बैनर्जी को चोट लगी है, धंगराज साहब को भी चोट लग के खेल नहीं पाए, नारायण खेले के बहुत अच्छा खेले वो भी, तो उससे हम हारे, नहीं तो हम सेमीफाइनल भी निकाल जाते।
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में भारत की सबसे बड़ी जीत 1962 के जकार्ता एशियाई खेलों के फाइनल में दक्षिण कोरिया के खिलाफ हुई। ये मैच भारत 2-1 से जीता, और वो तब जब मैदान में बैठे सारे 110,000 दर्शक भारत के खिलाफ थे।
इंडोनेशिया जो नॉन अलाइन मूवमेंट का एक भाग था, तो इसराइल और ताइवान जिसे आजकल बुलाते, उन दोनों को इंडोनेशिया ने अनुमति नहीं दी थी खेलने के लिए, कहते राजनीतिक कारण के लिए हम आने नहीं देंगे। तो चलो ये उनका मामला था। सोंदी साहब थोड़े पुराने विचार के थे, वो जो एवरी ब्रंडेज और आईओसी के स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स शुड नॉट मिक्स, तो उन्होंने अखबारों में ये स्टेटमेंट दे दिया। तो इंडोनेशिया के अखबार पत्रकार और जो दर्शक थे उन्हें बहुत नाराजगी हुई कि वैसे तो इंडिया हमारा दोस्त बनता है और अब हमारी सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो सारी इंडियन टीम के विरोध हो गए और फुटबॉल टीम धीरे धीरे अच्छा करती रही, फाइनल पहुंची। तो इतना कठिन हो गया था कि जब टीम बस गेम्स विलेज से ग्राउंड जा रही थी तो जर्नैल सिंह को बस के जमीन पर रहना पड़ा, क्योंकि वो सरदार थे तो पगड़ी पहनते थे हमेशा, तो वो दिख जाती कि इंडियन टीम है, तो वो लोग पत्थर फेंकते थे बस पे, इतना कठिन था वो।
उस टीम के एक सदस्य बालाराम बताते हैं कि वो उस मैच को अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएंगे।
वो याद हमेशा रहेगा, वो जब तक मरने तक वो रहेगा। वो उस दिन 110,000 लोग थे उन लोग ग्राउंड में, पूरा पब्लिक उन इंडोनेशियन पब्लिक हमारा इंडिया के अगेंस्ट में हो गया था, चिल्ला रहे थे। हम लोगों को कुछ मालूम ही नहीं था उसका। आगे तक हम लोग इंडियन टीम बहुत फेवरेट थे, उन लोग बराबर ही बोलते थे ये बार गोल्ड मेडल जीतेगा तो इंडिया ही जीतेगा। वो पब्लिक फाइनल के दिन में हम लोग के अगेंस्ट में हो गया, इतना चिल्ला चिल्ली। हम लोग जो इंडियन सपोर्टर्स भी थे उसको भी उन लोग बोतल गेतल क्या क्या इससे मार रहे थे। हम लोग को समझ नहीं आया, गेम खत्म होने के बाद मालूम हुआ ये पूरा पब्लिक हम लोग के अगेंस्ट में था। हम लोग के एक ही ध्यान था, देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना, एनी हाउस जीतना, मौका चांस है, इसका बाद में कभी मिल नहीं सकता हम लोगों के, क्योंकि हमारा टीम भी अच्छा था, हमारा कोच तो सबसे बढ़िया था मिस्टर एसी राइम, इनके वजह से हम लोग जीते हैं।
इस मैच का डिफाइनिंग मोमेंट तब आया जब कोच रहीम ने गंभीर रूप से घायल हो चुके फुल बैक जर्नैल सिंह को सेंटर फॉरवर्ड के रूप में खिलाने का फैसला किया।
लीग मैच में थाईलैंड के विरुद्ध जर्नैल जो स्टॉपर खेले डिफेंडर थे उनका सिर कट गया था, 8-10 स्टिचेस लगे थे, तो वो हेड कर नहीं सकते थे। तो फिर रहीम और चुन्नी ने डिसीशन लिया कि जर्नैल वो एक जो आजकल की फुटबॉल में टारगेट मैन रहेंगे, शक्तिशाली आदमी, अच्छा वो पैर उठाते थे दूसरे के सिर तक, इतने फिट थे। तो वो कहते वो छाती से रोकेंगे, वन टच हमें देंगे, और दूसरी टीमें इनसे वो एशिया के टॉप डिफेंडर गिने जाते थे, तो एक वो माइक टाइसन वाले थे, लोग डरते थे उनसे। तो कहते वो फायदा होगा, और जर्नैल खेले थे सेंटर फॉरवर्ड अपने कॉलेज डेज में, बिल्कुल भी नई चीज नहीं थी। तो जर्नैल को ऐसे खिलाया पीके बैनर्जी, जर्नैल, चुन्नी गोस्वामी और बलराम, और यूसुफ खान विड्रॉन हो गए उस समय। तो जर्नैल ने ये साउथ वियतनाम के साथ शुरू किया सेमीफाइनल में, और फिर फाइनल में भी खिलाया, और वो एक कमाल की रणनीति थी।
मैच से एक दिन पहले कोच रहीम ने सारे खिलाड़ियों को जमा कर कहा कि उन्हें उनसे एक तोहफा चाहिए।
रहीम ने ये दो चीजें बोली, एक तो बोला ऑफसाइड नहीं खेलना क्योंकि क्राउड चिल्लाती रहेगी, तुम खड़े रहोगे, दर्शकों में किसी ने सीटी बजा दी तुम खड़े हो जाओगे। तो कहता पीछे हट के खेलना, आगे डिफेंडर ज्यादा नहीं जाना। और जो सबसे मतलब जिसे प्रोत्साहन मिला कि कहता वो किस्मत थी कि 15 अगस्त को टीम ने यात्रा के लिए चले कलकत्ता से, ब्रॉडवे होटल में ठहरे हुए थे, और 15 साल स्वतंत्रता के बाद था। तो कहता है कि जैसे फ्रीडम फाइटरों ने और महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता दिलाया, जिस ब्रिटिश अंपायर जो कहते थे जिसका सूरज कभी डूबता नहीं है, कहता है वो कर सकते थे, तो हमने एक सिर्फ फाइनल जीतना है दक्षिण कोरिया से, तो इनसे डरो नहीं। और सब ने झंडा को छुआ उस समय, तो वो उन्हें बहुत इंस्पायर किया रहीम ने। और कई लोगों को मालूम नहीं है कि रहीम साहब को अंदाज़ा हो गया था कि वो कैंसर के मरीज थे, उन्हें पता था ये आखिरी मौका है कि एक विदेशी देश पे जाके गोल्ड मेडल जीते। उन्होंने एक रात पहले भी पीके बैनर्जी वगैरह को बोला था कि आप लोगों से एक तोहफा चाहिए, सोना जीत के आना। तो वो एक इंस्पिरेशन से गए हैं। और जो खिलाड़ी जिनसे बात होती वो कहते कि हम इतना अच्छा पहले हाफ में भारत खेले कि कम से कम 5 गोल आगे होने थे, खैर 2 ही किए, जर्नैल ने पहला किया और पीके बैनर्जी साहब ने विनिंग गोल किया। कहता हम इतने आक्रमण में गए कि दक्षिण कोरिया हिल गए, खैर अल्टीमेटली 2-1 से जीते।
रेहान फजल, BBC दिल्ली।
देखना होगा कि आज भारत की अंडर 17 टीम अमेरिका के खिलाफ कैसा खेल दिखाती है। मैच बस शुरू होने को है। विवेचना पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला राजेश चौहान ने, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया ब्रजेश मिश्र ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।